मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, हम सबके जीवन की अपनी अपनी कहानियां हैं और सच पूछिए तो हम सबका जीवन एक बहुत बड़ा उपन्यास भी है। और इस वृहद उपन्यास में न जाने कितने सारे चढ़ाव हैं, कितने सारे उतार हैं, कितनी सफलताएं हैं, कितनी असफलताएं हैं, इनके एक एक बिंदु को लेकर के इस एक बड़े उपन्यास से न जाने कितनी सारी कहानियां बनाई जा सकती हैं और एक खूबसूरत फिल्म तो तैयार हो ही सकती है। अब आप देखिए कि होता क्या है। मैंने कहा कि हमारे जीवन में उतार हैं, चढ़ाव हैं, सफलताएं हैं और असफलताएं हैं। अगर किसी के जीवन में ये सब नहीं है या बहुत ही थोड़ा नहीं के बराबर है तो उसकी जीवन फिर कोई बहुत उत्साहजनक, उत्साहवर्धक कहानी भी नहीं है, न उपन्यास है और उस पर फिल्म नहीं बनाई जा सकती। फिल्म बनेगी ही उस पर जिसके जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहे हों, राइट? अब आप देखिए कि जब हम अपने जीवन में असफल होते हैं, यानी कि जब हम उतार के दौर में होते हैं और जब उतार का दौर खत्म हो जाता है तो हम अपनी असफलता के लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, या यूं कह लीजिए कि जब हम असफल हो जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि जब हम असफल होने का चुनाव करते हैं, इसे मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, जी हां, हम असफल होने का चुनाव करते हैं, हम चुनते हैं कि हम असफल हों। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरी इस बात से कोई भी सहमत नहीं होगा कि यार भला ये भी कोई बात हुई कि हम चुनाव करते हैं कि हम असफल हों, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन है, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतर करके और इसकी खोज खबर लेने की कोशिश करेंगे तो पता लगेगा कि सच में मैं तो असफल ही होना चाह रहा था, लेकिन फिलहाल मेरा यह विषय नहीं है, मेरा विषय कुछ दूसरा है। तो दोस्तों, जब हम असफल हो जाते हैं तो हम उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? मोटे तौर पर अगर हम व्यापक रूप में कहें तो अपनी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, मुझे जो सुविधाएं चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, मेरा परिवार का वातावरण ऐसा था, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, दोस्त ऐसे थे, पता नहीं क्या क्या, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। इस तरह से हम परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहरा करके और पल्ला झाड़ लेते हैं और अपने को सुरक्षित कर लेते हैं। दोस्तों, आइए इसी की एक केस स्टडी करते हैं और बिल्कुल एक जीवंत केस मैं आपके सामने रख रहा हूं, एकदम जीवंत और बिल्कुल ताजा भी। प्लीज आप सब इस पर विचार करें और मुझे लगता है कि आप सब इसके बारे में जानते हैं। हो सकता है कि मैं जिस रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूं उस रूप में आपने न लिया हो। एक लड़का है, राइट, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का लड़का। छतरपुर कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट प्लेस नहीं है लेकिन ऐतिहासिक जगह जरूर है क्योंकि वहां के मंदिर जो खजुराहो के मंदिर हैं वो प्रसिद्ध है। 19 साल उम्र, गांव में रह रहा है या छोटी जगह में रह रहा है और उनके जो पिता हैं वो दिल्ली के पास जो एक जगह है नोएडा, वहां सिक्योरिटी गार्ड हैं और उनकी सैलरी है कुल जमा 14,000 रुपए। नोएडा जैसी जगह में अगर 14,000 रुपए सैलरी मिल रही है तो आप कल्पना करके देखिए कि उस परिवार की आर्थिक स्थिति क्या होगी। परिस्थितियों की बात आपको बता रहा हूं। तो यह नौजवान लड़का है, यह आता है और अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठता है। अमिताभ बच्चन जी के सामने, वो अपने आप में एक मॉडल है। यहां देखिए कि इसकी उम्र सबसे कम है, 19 साल। सबसे कम मैं किस मायने में कह रहा हूं अभी आपको पता चलेगा। और इसके बाद उनके सामने जो बैठे हुए हैं उनकी उम्र है 80 साल। 80 साल की उम्र में इतनी ऊर्जा, गजब की ऊर्जा। खैर, अब देखिए 19 साल और 80 साल के बीच का फासला। ये लड़का आता है, बैठता है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्नों के जवाब देता है। और प्रश्नों के जब वो जवाब देता है और जिस तरह के प्रश्नों के जवाब देता है उन्हें सुनकर अमिताभ बच्चन हतप्रभ रह जाते हैं कि अरे बाप रे, ये जवाब कैसे दे रहा है। और 1 करोड़ रुपए या 19 साल का लड़का जीतकर कौन बनेगा करोड़पति के 20 साल के इतिहास में एक इतिहास रच देता है। 20 साल से कौन बनेगा करोड़पति, ये कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन कोई भी, हालांकि 1 करोड़ जीतने वालों की संख्या अधिक है, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसकी उम्र इतनी कम रही हो। अगर आपने देखा हो तो प्रश्न भी आपने सुने होंगे, प्रश्न कोई आसान किस्म के नहीं थे, उन्हें जिताया नहीं गया है, उसने जीता है। दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ? मैंने परिस्थितियां आपको बताई हैं। मुझे लगता है कि हमें इन सब पर विचार करना चाहिए और यहां से फिर अपने लिए संदेश निकालने चाहिए। यहीं से निकलेंगे। उस पूरे के पूरे बातचीत के दौरान आपने गौर किया होगा कि पता लगा था कि ये जो लड़का है ये लाइब्रेरी में काम करता है या क्या है, कुछ इसी तरह की बात थी। यानी कि उसका जुड़ाव लाइब्रेरी से था, यानी कि वो लाइब्रेरी में है। अब वो लाइब्रेरी में है तो लाइब्रेरी के वातावरण में वो रह रहा है। उसने क्या किया होगा, क्या किया होगा लाइब्रेरी में रह करके? उसने यही किया होगा, बहुत कोई दूर की कौड़ी नहीं है, बड़े आराम से आप सोच सकते हैं कि भैया ये जो किताबें हैं इन्हें पढ़ो, इन्हें समझने की कोशिश करो, ज्ञानवर्धन करो। फालतू बैठे रहने से क्या होगा, जब काम होगा तो काम करेंगे, बाकी समय में पढ़ने का काम करेंगे। और उसने यही किया और अपनी उन परिस्थितियों को उसने अपनी ताकत में कन्वर्ट कर दिया और इस तरीके से एक इतिहास रच दिया। शुरुआत मैंने परिस्थितियों के बारे में की थी। दोस्तों, विश्वास कीजिए कि हमारी परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हमें क्यों न दिखाई दे रही हों, ये दिखाई दे रही हों मैं जानबूझ करके कह रहा हूं, लेकिन उन्हीं में हमारी शक्तियों को बढ़ाने का संकेत होता है और हमारी शक्तियों को कई गुना बढ़ा देने की ताकत होती है, सुविधाओं में नहीं। इस पर आप सब विचार करें और मुझे लगता है कि यहां से हम जीवन के बहुत सारे सूत्र हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अब 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। नमस्कार।